अगले दिन इनाया की आंख प्यास से सुबह जल्दी खुल गई। जैसे ही उसने खुद को देखा वो पूरी तरह चौंक गई। वो कायराव की बाहों में समाई सो रही थी। उसकी बाहें कायराव की पीठ पर लिपटी थीं और कायराव ने उसकी कमर को थामा हुआ था। इनाया ने हड़बड़ाते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैं यहां कैसे पहुंच गई? मुझे तो अच्छे से याद है, मैं तो अपनी ही जगह सोई थी। इनाया कन्फ्यूज हो गई। ये कोई पहली बार नहीं था जब से कायराव के साथ सोने लगी थी। जब भी सुबह उससे पहले उठती खुद को उसकी बाहों में ही पाती थी। क्या मैं सच में नींद में इसके पास आ जाती हूँ? लेकिन इसने भी तो मुझे कितनी टाइटली पकड़ा हुआ है। हो सकता है नींद में पकड़ लिया हो। इनाया ने कायराव को देखा जिसे देखकर यही लग रहा था कि वो गहरी नींद में सो रहा था और धीरे से अपनी कमर पर से उसके हाथ को हटाने लगी, जो थोड़ा मुश्किल था। कुछ देर बाद कायराव ने खुद ही उसे छोड़ दिया और दूसरी तरफ करवट बदल ली। इनाया झट से उठकर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। हाथ दिल पर चला गया जो जोरों से धड़क रहा है। तो क्या ब्लास्ट होना चाहता है जो इतनी तेज तेज धड़क रहा है? इतना तेज तो तू तब भी नहीं धड़कता था जब मैं 2 किलोमीटर की रेस में दौड़कर फर्स्ट आती थी। इनाया ने अपने ही दिल को डांटते हुए बुरा सा चेहरा बनाया। एक नज़र कायराव को देखने के बाद आराम से नीचे उतर गई। पहले वॉशरूम गई, आकर पानी पिया और फिर सोने की जगह बालकनी में चली गई। सुबह के 5 ही बज रहे थे। सूरज बादलों की ओट से बाहर निकलने लगा था। उसकी सुनहरी किरणें धीरे धीरे चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाने लगी थी। कुछ पंछी भी आकाश की सैर पर निकले थे जिनकी चहचहाट की मधुर आवाज माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। सामने दूर दूर तक हरी भरी घास से सजा गार्डन था। बड़े बड़े पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था जिसे देखते हुए इनाया के होठों पर मुस्कान फैल गई। रेलिंग के पास खड़ी वो आंखें मूंदे ठंडी हवा को अपने चेहरे को छूकर गुजरते हुए महसूस कर रही थी। अचानक ही उसे अपनी कमर पर किसी की गर्म हथेलियों के फिसलने का एहसास हुआ। इनाया सिहर गई। चिहुकते हुए उसने अपनी आंखें खोल दी। उसी पल उसके कानों के बेहद करीब से कायराव की आकर्षक आवाज आई और उसका दिल एक बार फिर शोर करने लगा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग, पर तुम यहां? इनाया के शब्द लड़खड़ा गए। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था कि सुबह सुबह तुम मुझे अंदर अकेला छोड़कर यहां क्या कर रही हो? कायराव ने उसके कंधे पर जिन टिकाते हुए हल्की नाराजगी जाहिर की। इनाया के जैसे शब्द एक हो गए। होंठ फड़फड़ाए पर गले से आवाज ही नहीं निकली और वो उसकी बाहों के घेरे में मचलने लगी। उसकी तरफ से जवाब न आने पर कायराव ने उसकी कमर को छोड़ा और उसके कंधों को थामते हुए उसे अपने तरफ घुमा लिया। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? इनाया ने लरस्ती पलकों को उठाकर उसे देखा और धीमी सी आवाज गले से बाहर निकली। नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो मैं बस ऐसे ही आ गई थी। इनाया, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कायराव की नजरें इनाया के गुलाबी चेहरे पर ठहर गईं। इनाया बुरी तरह सकपकाई और अपने दोनों गालों को अपनी हथेलियों से ढक लिया। पता नहीं, शायद गर्मी लग रही होगी। शायद, और गर्मी लगने पर तो पसीना आना चाहिए। मुझे पसीना नहीं आता, मेरा चेहरा लाल हो जाता है। अब तुम हटो, मुझे अंदर जाना है। इनाया ने कायराव को खुद से दूर किया और हड़बड़ाई हुई रूम में भाग गई। कायराव रेलिंग से टिककर खड़ा खामोशी से उसे देखता रहा। उसके होठ हल्के से खिंच गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गर्मी का नहीं बल्कि मेरी नजदीकियों का असर है? तुम्हारा सुर्ख चेहरा, लड़खड़ाती जुबान, कांपती पलकें, बेचैन सांसें, धड़कनों का शोर तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और अगर ये सच है तो वो वक्त दूर नहीं जब मेरी ये एक तरफा मोहब्बत मुकम्मल इश्क बन जाएगी। दूसरे तरफ बाथरूम में लगे उस बड़े से मिरर के सामने खड़ी इनाया आंखें बड़ी बड़ी करके अपने लाल चेहरे को देख रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब उसने मुझे छुआ तो इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हुई मुझे? दिल क्यों इतनी जोर से धड़कने लगा? उसकी सांसों ने मेरे गाल को छुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरा चेहरा जलने लगा हो। मैं तो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। सवाल बहुत थे पर जवाब नहीं थे। वो कंफ्यूज सी खुद को ही घूरे जा रही थी। एक तो आजकल मैं खुद को ही समझ नहीं पा रही, ऊपर से कायराव को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो क्यों ऐसे बेझिझक मेरे करीब आ जाता है, मुझे छूता है? कल तो उसने मुझे किस भी कर लिया था। ये ना मुझे सच में अपनी वाइफ समझने लगा है। लेकिन उसे कुछ कहने का भी कोई फायदा नहीं। वो तो सीधे कह देगा कि मैं उसकी वाइफ ही हूं और बात सच भी है। लेकिन ये सब जो भी है ठीक नहीं है। मुझे कुछ हो रहा है, वो जो करता है सो करता है, पर मैं भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा और जब तक मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल जाता मुझे कायराव से दूर ही रहना होगा। इसके बाद इनाया कायराव के सामने आने से बचती रही। कायराव अंदर गया तब तक मैं नहाकर नीचे भाग गई। नाश्ते के टाइम भी दादी के पास जाकर बैठ गई। ये देखकर कायराव की भी भौहें तन गईं। कायराव बेटा, आप जयपुर कब जा रहे हैं? दादी, आज शाम की फ्लाइट है, रात तक पहुंच जाएंगे और कल कुंदेवी के मंदिर जाकर पूजा भी करवा लेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये अच्छा सोचा है आपने। हम आज ही पंडित जी से बात करके सारी तैयारियां करने कह देते हैं, ताकि आप दोनों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपको सब याद है ना? हाँ दादी, मुझे सब याद है। आप बेफिक्र रहिए, मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगा और जैसे आपने कहा है सब वैसा ही होगा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और इनाया के होश उड़े हुए थे। वो फटी आंखों से कायराव को देख रही, जो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे तैसे इनाया ने नाश्ता गले से नीचे उतारा। कायराव नाश्ते के बाद रूम में गया तो इनाया भी बहाना बनाकर उसके पीछे भाग गई। तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया कि आज हम जाने वाले हैं? अचानक आई इनाया की आवाज सुनकर कायराव पलटा। इनाया दोनों हाथ कमर पर रखे उसके पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ दिनों में हम जयपुर जाएंगे, इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है। कायराव बिल्कुल शांत था। वहीं इनाया का चेहरा नाराजगी से भर गया। हाँ, बात हुई थी, पता था मुझे कि हम जयपुर जाएंगे, लेकिन तुमने मुझे ये तो नहीं बताया कि हम आज जाएंगे। जब जाना फिक्स था तो आज जाएं या कल, क्या फर्क पड़ता है? और मैं तुम्हें बताने वाला था। कब? शाम को, जब हम निकलते। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे साथ मुझे भी जाना था ना, तो मुझे पहले से बताना चाहिए था। मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद से मैं उससे एक बार भी नहीं मिली हूँ और हम वापस पता नहीं कब आएंगे। मुझे कितनी सारी बातें करनी थी उससे। मैंने सोचा था जाने से पहले उससे मिल लूंगी, लेकिन तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। इनाया गालों को फुलाए उसे घूर रही थी। कायराव को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सॉरी, मैं तुम्हें पहले बताने वाला था पर भूल गया, लेकिन अभी भी टाइम है, तुम जाकर उससे मिल सकती हो। लगभग आज का पूरा दिन है तुम्हारे पास। अब तो वो ऑफिस भी चला गया होगा और सीधे शाम को घर आएगा, तो मैं कब मिलूंगी उससे? इनाया ने मुंह बिचकाया। कायराव भी कुछ परेशान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, फोन करके देखो, अगर नहीं गया होगा तो आज का ऑफ ले लेगा या हाफ डे में आ जाएगा। अगर वो तुमसे मिलना चाहे तो कोई भी रास्ता निकाल सकता है। तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूंगी कि मुझे अपने फ्रेंड से कैसे मिलना है, इनाया ने तुनकते हुए कहा और मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। कायराव परेशान सा उसे देखता रह गया।
आज वो उसे बाहर तक छोड़ने भी नहीं गई। कायराव इशारे करता रहा पर वो बस उसे इग्नोर करती रही। आखिर में हार कर कायराव वैसे ही चला गया। इनाया मुंह फुलाए वापस अपने रूम में जा रही थी कि अचानक ही मिस्टर रायचंद उसके सामने आकर खड़े हो गए। अपने गुस्से और नशे से भरी लाल आंखों से उसे घूरने लगे। उन्हें देखकर इनाया एकदम से घबरा गई।